शांति। वो माता जो पीछे बैठी है वो आगे आ जाए। अच्छा लगता है कि आगे आगे रहते हैं ना, वैसे भी आगे जाना है और आगे आगे आते हैं तो ऐसा लगता है क्लोज है। तो मधुबन में ये मौका बहुत अच्छा होता है। नीचे शांतिवन में जाते हैं तो ऐसे करीब से चेहरे नहीं देखने को आते, लेकिन यहाँ पर एक एक को करीब से न केवल देख सकते हैं बल्कि वाइब्रेशंस भी कैच कर सकते हैं। तो कई मामलों में फॉरेनर्स तो बहुत ही लकी हैं। अभी हम तीन दफा, दादी तीन दफा ओम शांति बुलवाती है ना, तो आज मुझे भी सुबह से ऐसे ओम शांति जो शब्द है इसके अंदर दादी तो हर क्लास के अंदर नया अर्थ बता देती है, पर प्रैक्टिकली न केवल हम बल्कि दुनिया वाले भी इस शब्द के महत्ता को बहुत ज्यादा जानते हैं। हम सूक्ष्म रीति जानते हैं पर सूक्ष्म का जो प्रभाव स्थूल पर पड़ता है वो जानते हैं। हम तो बस उच्चारित कर देते हैं ये महामंत्र, लेकिन वो जो शक्ति है इसके अंदर, जिससे न केवल मन के बल्कि तन के अनेक रोग मिट जाते हैं, अनेकानेक बीमारियां इस मंत्र से ठीक हो जाती हैं। इस संपूर्ण संसार के अंदर जो कहते हैं कि स्थापना पालना और इसका विनाश, इन तीनों का द्योतक ये शब्द माना जाता है। ये हम नहीं कहते, ये दुनिया वाले कहते हैं। हम तो बोलते हैं पर दुनिया वाले कितना समझते हैं। और ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संपूर्ण सृष्टि की स्थापना शिव ने ओम की ध्वनि से की। अब सोचो कि हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले इसी ध्वनि का उच्चारण किया। पहले तो ओम शांति नहीं कहते थे, ओम ही कहते थे, इसलिए तो ओम मंडली नाम प्रचलित हुआ। तो कई बार ऐसे मन में आया कि स्टार्टिंग, जैसे कहते हैं ना कई बार कि आदि सो अंत होगा, तो जो आदि में स्टार्टिंग के अंदर जो कर्तव्य किए गए, जो नींव रखी गई, अंत के अंदर भी उतनी ही स्ट्रेंथ, उतनी ही ताकत, उतनी ही शक्ति हम सबके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जितना कठिन है किसी चीज को बनाना, उतना ही कठिन है कि अपनी चीज हो जाती है ना तो बन जाती है, फिर उसको पालना करते हैं। पालना के बाद वो जब डिस्ट्रक्ट करने में एक होता है टाइम पीरियड, वो तो कम हो सकता है, लेकिन उसको वो जो हम धीरे धीरे देखते हैं, समझते हैं और वो जो मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ चुका होता है, और जब मन किसी सीन को देखने के लिए तैयारी जो कर रहा होता है और जब सामने बार बार वो दृश्य आने लगे, तो वो एक बारी तो एक चीज खत्म हो जाती है लेकिन अनेक बार वो हमारे मन के ऊपर प्रभाव छोड़ती जाती है। तो वो प्रभाव ना पड़े उस समय भी हम अपनी जो स्वस्थिति है उसके अंदर स्थित रहें, तो तो उतना ही कठिन है उस डिस्ट्रक्शन के टाइम पर भी अपने आप को संभालना। तो पालना के अंदर जो मेहनत है और फिर जो डिस्ट्रक्शन के अंदर जो हिम्मत चाहिए, तो उसके लिए तो तैयारी चाहिए ना। तो अभी हम 3 दफा ओम शांति बोलेंगे, पर जब हम बोलेंगे तो अपने मन को भी चेक करेंगे कि ये जो मेरे अंदर चल रही हैं बातें, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो चलता है। अभी जैसे जाना है तो जहां जाना है तो उसके बारे में बातें चलेंगी। अभी कई सारे घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, अभी कई सारे बंधन होते हैं, तो फिर कई चीजें जो मन के अंदर चलती हैं वो फिर स्टॉप हो पाती हैं। क्या मैं उसको फुल स्टॉप दे पाती हूँ? तो हम 3 दफा जब उच्चारण करेंगे, चेक करेंगे और चेंज करते जाएंगे, ताकि स्टेबिलिटी, शांति मतलब चुप नहीं है, शांति मतलब स्टेबल हो जाए माइंड, अनशेकेबल, थोड़ा सा भी हिले नहीं। और वो तब होगा जब मैं अपनी जो ओरिजिनल स्टेज है उसको समझ जाऊं कि ये मेरी है और किसी की नहीं है, ये मेरी है। तो अलग अलग नहीं बोलेंगे, आगे पीछे नहीं, इकट्ठे बोलेंगे, सभी बोलेंगे। ओके, हमारे इस मंत्र में सारी दुनिया को संभालने की ताकत है। सारी दुनिया में जो हलचल है, उस हलचल को समाप्त करने की ताकत है, क्योंकि सब चाहते हैं शांति। इंडिविजुअली हर चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है शांति। तो पिछली दफा जब हम मिले आपस में, आप सभी थे ना पिछली क्लास में, तो कईयों के मन में कई सारे प्रश्न उठे। तो फिर हमने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जब मिलेंगे ना, फिर उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो बाय चांस मिलने का मौका बहुत जल्दी आ गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा ये जो परिवार है, इस परिवार के अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी जो विशेषताएं हैं, वंडरफुल है। तो बाबा ने एक एक को जो चुना है, ऐसा नहीं चुना है। मुझे याद है जब मैं नई नई सेंटर पर आई, तो 7 डेज कोर्स के बाद जब पहली मुरली सुनी, तो पहली मुरली सुनने के बाद उसका स्लोगन होता है ना एंड में, तो मुरली तो इतना ध्यान नहीं रही, क्योंकि पहली दफा कोई मुरली सुनता है तो उसके लिए तो नई चीज होती है। तो स्लोगन याद रहा, समझ नहीं आया पर याद रहा, आज भी याद है। तो उस मुरली का स्लोगन था कि विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इसे ईश्वर की सेवा में अर्पित करो। तो मुझे लगा कि हमारे पास जो भी विशेषताएं हैं, पहले तो हम ये समझें कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। तो जब हम किसी से पूछें आपके अंदर क्या क्वालिटी है, तो दुनिया में तो कहते हैं हम तो नाचीज हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, पर प्रैक्टिकली देखें तो हर एक को अपना थोड़ा थोड़ा अभिमान तो है, लेकिन ईश्वरीय सेवा में कैसे अर्पित करना है, भगवान को पसंद क्या है। हमारे अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भगवान को उसमें से पसंद क्या है, किसको वो कैसे यूज करेगा, कुछ पता ही नहीं होता है। तो मुझे याद है कि जब हम अभी तक का रिकॉर्ड है, थैंक्स है बाबा का, पता नहीं था इतनी वैल्यू है। मुझे याद है कि जब हम पहली दफा आए सेंटर पे, तो जैसे एंटर हुए तो दो भाई थे, तो उनमें से जो छोटा भाई था उसने मुझे कहा कि आपको हम एग्जीबिशन दिखाते हैं। ये बात दिल्ली की है, आपने आप में से कहीं अगर गए होंगे दिल्ली, तो जो दिल्ली का एक बहुत ही पुराना सेंटर है जो राजौरी गार्डन में है, तो वहां पर अभी तो फ्लाईओवर बन गया ना, तो दिखाई नहीं देता है एक सड़क के इस तरफ से दूसरी तरफ, पर पहले नहीं था तो बहुत क्लियर कट दिखता था। तो उस पर बहुत बड़ा बाबा का ना सृष्टि चक्र का चित्र है, बहुत बड़ा सृष्टि चक्र का चित्र है। तो वो देखा तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी जगह है, तो एक दफा ट्राई किया कि मैं उधर जाऊं। मैं सड़क के इस तरफ थी और हम ऑफिस के लिए जाते थे, और ऑफिस में जाते हुए वो चार्टर्ड बस की खिड़की से देखते थे, तो देखा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, तो सोचा कि उतर के जाते हूं। फिर सोचा नहीं नहीं, फिर एक दफा, फिर दो दफा, फिर तीन दफा, फिर एक बार छुट्टी का दिन था तो सोचा कि आज तो चल ही जाते हैं। तो वहां गए तो वही दो भाई थे, 4 बजे का टाइम था शाम के, तो उस समय तो बस ओपन होने का टाइम होता है, तो सभी के रेस्ट का टाइम होता है ना, 12 to 4 तो क्लोज रहता है, इंडिया में तो ऐसे है। तो 4 बजे के आसपास का टाइम था, छुट्टी का दिन था, वो दोनों में से छोटे ने कहा मैं आपको एग्जीबिशन दिखाता हूँ। तो एग्जीबिशन देखी, अच्छी लगी, उसमें सृष्टि चक्र का ही चित्र था, और उस भाई ने मुझे कहा कि आप यहाँ 5000 वर्ष पहले भी आए हो। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, फॉरेन में मैंने कईयों का देखा है, एक्सपीरियंस सुनाते हैं ना, तो कहते हैं हमें डाउट ही इसी बात पर होता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो नई फिलॉसफी है। तो लेकिन जब हमने सुना पहली दफा कि आप 5000 ईयर्स पहले भी यहां आए हो, तो मुझे लगा ये नॉलेज बिल्कुल करेक्ट है, इसे क्लिक हो गया। तो मुझे लगा यहाँ सुनना चाहिए कि क्या बोलते हैं। फिर उसका जो बड़ा भाई था, तो वो अपने टीचर बहन को कहता है वहां पे, भाई मुझे मुरली दे दो। तो मैंने पहली दफा सुना मुरली, तो हमारे अकॉर्डिंग तो मुरली मीन्स वो फ्लूट हो गई ना। तो कहता है मुझे मुरली मुरली चाहिए। तो फिर मैंने अपने आप ही अज्यूम किया कि मैंने कहा अच्छा यहाँ तो शायद फ्लूट बजाना भी सिखाते हैं। तो मुझे ऐसे मन में आया कि सब कुछ आता है, ये सारी आर्ट्स तो आती है, पर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता है। तो मुझे लगा कि चलो ये इंस्ट्रूमेंट बजाना जो है ना सीख लेते हैं यहाँ से। तो मैंने उसे कहा कि मुझे भी मुरली सीखनी है, मुझे भी मुरली बजाना नहीं बोला, कुछ और ही सेंटेंस बोला। तो उसने कहा हाँ हाँ, आपको पहले 7 days का कोर्स करना पड़ेगा। तो मुझे लगा ठीक है, 7 days के कोर्स में मुरली सीख जाएंगे। तो बहन क्या था कि सेंटर पे तो छोटी बहनें होती है ना, तो मैं एक्चुअली जर्नलिस्ट थी। तो फिर हमारी आदत थी कि एक ही आदत होती जर्नलिस्ट की, क्वेश्चन पुट अप करना, क्वेश्चन पे ऊपर, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। तो वो कोर्स कराने बैठी तो वो क्या कोर्स कराएगी, मैं ही उससे क्वेश्चन पूछने लग गई, भाई आप कौन हो, आप क्यों आए यहाँ, आपको यहाँ क्या है, मतलब कोर्स क्या है। 1 घंटे में मैं उसका इंटरव्यू ले लेती थी। तो वो सोचती थी कि ये क्या, पर करते करते धीरे धीरे वो 7 days कोर्स हो गए, पर वो मुरली तो मेरी रह गई। फिर बहन ने कहा कल से आप मुरली क्लास में आना। तो लगे शायद अभी मुरली, तो उन्होंने कहा सुबह इतने बजे आना। तो यहाँ पर इस राजौरी गार्डन पे जो दादी रुक्मणी दादी है, तो रुक्मणी दादी थी उस समय, तो वो भी बैठे और शक्ति बहन है वो भी बैठे। तो दादी ने मुरली सुनाई, पर वही स्लोगन तो सुना मैंने, पर मन में यही रहा कि वो वाली मुरली जिसके लिए आई थी वो तो दूसरी थी। फिर धीरे धीरे करके वो मुरली अच्छी लगने लगी। और वंडर ये था कि थोड़े टाइम के बाद जब मेरी थोड़ी जॉब चेंज हुई तो टाइमिंग्स चेंज हो गए, और हुआ ये कि कुछ एक दिन के अंदर ही वो टाइमिंग्स ऐसे थे कि अब उस समय कोई भी बहन फ्री नहीं होती थी। तो उस समय हमारा 5-6 लोगों का ग्रुप था, उसमें बाकी सारे लोग तो गृहस्थी थे, पर मैं ही एक कुमारी थी। तो मुझे कहते थे आप मुरली सुनाओ, और क्योंकि हम जर्नलिस्ट थे तो एम ऑब्जेक्ट ये होता था कि अभी क्योंकि पहले टीवी चैनल में काम किया था तो टीवी पे जाके एंकर बनना है, टीवी पे न्यूज रीडर होते हैं ना, तो न्यूज रीडर बनना है। तो ये था, तो मुरली देते थे पढ़ने के लिए, तो मैं ये सोच के मुरली सुनाती थी कि मुझे जो है ये न्यूज जो है, मतलब इसका कोई भी शब्द जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। और मुझे लगा इसकी हिंदी तो बहुत ही बढ़िया है, तो आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट। तो एक एक शब्द बहुत ही अच्छी तरह कोशिश करके, जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से बोल सकती थी मैं शुरू करती थी। तो मेरा एम ऑब्जेक्ट तो दूसरा था, पर उसके कारण क्या हुआ कि आज दिन तक का रिकॉर्ड है, एक भी मुरली मिस नहीं हुई। मुझे याद है कि एक बारी हम, मतलब उसकी इतनी आदत पड़ गई कि अगर समझो नाश्ते से पहले मैंने मुरली नहीं सुनी तो आई, मतलब लिटरली स्टार्ट क्राइंग, मुझे रोना आने लग जाता था कि अगर ये मतलब ये मेरा पहला खाना है, इतनी आदत पड़ गई वो मुरली सुनाने की, तो समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। मुझे याद है एक बारी हम अपने लौकिक में गए, तो लौकिक में गए तो एक बारी ऐसा हुआ कि सुबह से लेकर रात तक मुरली नहीं पढ़ पाई, मतलब सुना नहीं पाई, सुन तो ली पर सुना नहीं पाई। तो मुझे लगा कि करूं क्या, सुनने वाला ही कोई नहीं था क्योंकि घर में तो कोई ज्ञान में नहीं चलता था, तो सुनाए किसको। तो उनको अंदर से प्रैक्टिकली ऐसा लगा कि अभी तो रोना आ जा रहा है। तो मैंने प्रैक्टिकली अपनी मम्मी और पापा को बिठा के मुरली सुना दी। और उन्होंने मुरली सुनी, अच्छा लगा उन्हें। लेकिन धीरे धीरे वो कैसे हमारी लाइफ में आ जाती है, कहते ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हम छोटे थे तो एक क्लास में एक बहुत अच्छी स्टोरी थी, तो उसमें यही था कि एक मंद बुद्धि बालक था, तो कैसे वो एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। तो उसके अंदर फिर उसने जब देखा कि जब वो एक पानी लेने के लिए एक कुएं के पास गया तो उसने देखा कि बार बार रस्सी के आने और जाने से उस पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। रस्सी तो नर्म है लेकिन पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, तो क्या मेरे पत्थर जैसी बुद्धि जो है वो नर्म नहीं हो सकती। तो उसके ऊपर ये एक बहुत सुंदर लाइन्स थी कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो जैसे रस्सी के आने और जाने से सिल यानी पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, वैसे बार बार अभ्यास करने से जड़मती यानी ऐसी बुद्धि जो जड़ समान है, पत्थर बुद्धि जिसे बाबा अक्सर मुरली में कहते हैं, वो जागृत हो जाती है। तो कई बारी मैंने देखा बिगनिंग के अंदर कईयों को ये लगता है कि बार बार ही तो बाबा वही बात कर रहे हैं, ये मुरली इतनी समझ नहीं आती है, या कई बारी हम सोचते हैं हमें आ गई है समझ, वही तो है। पर अगर वो बात है कि वही तो है तो इसका मतलब अभी तक पूरी समझ नहीं आई है, क्योंकि ये इतनी गहरी है। एक एक शब्द किस कंट्रास्ट में कब कहा जाता है वो समझने में टाइम लगता है। आज भी कई बार हम देखते हैं कि एक ही मुरली को 10 15 20 दफा भी पढ़ो, हर बार ही डिफरेंट मीनिंग होता है। अब वो डिफरेंट मीनिंग्स कहां से निकलते हैं पता नहीं, जैसे बुद्धि के कपाट ही खुलते जाते हैं, खुलते जाते खुलते जाते हैं। अभी आपको एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आती है। एक बारी कई बारी हम क्या करते हैं कि ये सोचते हैं ना कि घरों में रहते हैं ना तो घर की भी कमिटमेंट्स होती हैं हमारी, और ये भी मन में होता है कि अगर ऑफिस भी जाते हैं भाई लोग तो ऑफिस की भी कमिटमेंट्स होती हैं, जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, मतलब एनीथिंग सेंटर के अलावा जो कुछ भी करते हैं, तो हम सबकी कहते हैं ना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। हाँ है जिम्मेवारी, पर एक होता है कि परमात्मा अर्थ है ना, ईश्वर अर्थ, एक होता है स्व अर्थ, दो चीजें होती हैं। मुझे याद है कि एक बारी हम जब दिल्ली में थे ना तो जॉब मैंने बताया था पिछली दफा करते थे, तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एज एन आईईसी ऑफिसर थी, यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर। तो मिनिस्ट्री के अंदर जो पब्लिसिटी का देखते हैं ना, तो जैसे कुछ रेडियो एड्स कराने हैं, फिर बाहर के होर्डिंग्स कराने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, कुछ लीफलेट्स पैम्फलेट्स बनाने, तो पब्लिसिटी का काम, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवानी है, वो सारा देखते थे। तो फिर क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे ज्यादा फंड, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो था वो वर्ल्ड बैंक फंडेड था, जितने भी हमारे हेल्थ के प्रोजेक्ट चलते हैं वो अक्सर वर्ल्ड बैंक फंड करता है, तो उसका बजट बहुत होता है, तो बहुत सारे पैसे देते इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर डेफिनेटली उसके फिर आपके बार बार ऑडिट भी होते हैं। तो हमारे तीन ऑडिट होते थे, एक होता था दिल्ली गवर्नमेंट का ऑडिट, एक होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट, और एक वर्ल्ड बैंक का ऑडिट। तीन ऑडिट होते थे। याद है मुझे कि एक बार वर्ल्ड बैंक का ऑडिट था, हमें एक दो हफ्ता पहले रिटर्न में इन्फॉर्मेशन आ जाती थी कि आपको इन दो या तीन दिन एब्सेंट नहीं होना है, छुट्टी नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका ऑडिट होगा और आपको प्रेजेंट जरूरी है सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वो ऑडिटर ऑफिस में आपको वहां होना है। तो ठीक है, होना है मतलब होना है। एक बार क्या हुआ, हम ऑडिट था वर्ल्ड बैंक का, तो उस दिन सतगुरुवार का दिन था। अभी सतगुरुवार वाले दिन तो भोग भी होता है, तो हम गए सेंटर पे। सेंटर पे मैंने कहा बहनों को फटाफट मुझे भोग पैक कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है आज, मुझे टाइम से सेंटर अपने ऑफिस पहुंचना है, तो मैं वहीं जाके जब टाइम मिलेगा ना तभी खा लूंगी। तो बहनों ने भी पैक करने लगे। फिर उस दिन हमारी जो वहां सेंटर की जो बड़ी बहन थी उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नीचे नहीं आई थी, तो उन्होंने किसी के थ्रू मैसेज कन्वे किया कि अदिति को कहो कि ऊपर आ जाए। मैं तो लेट हो रही थी तो अभी मैंने कहा दीदी को कहूंगी, दीदी को कहो शाम को आऊंगी आराम से, अभी मैं लेट हो रही हूँ तो मेरा ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है, तो शाम को आके मैं सीधा सेंटर पे आपसे मिलूंगी। तो बहन ने बोला, तो दीदी ने फिर मैसेज भेजा, उसे कहो बहुत जरूरी काम है। तो मैंने कहा मेरे को बहुत ही जरूरी है, लेट हो गई थोड़ा सा तो अभी देखो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ी देर तक तो हुआ, फिर मुझे लगा कि ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, जाके पूछ ही लेते हैं। तो फिर ऊपर गई तो मैंने दीदी को सीधा बोला, मैंने कहा दी सॉरी अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि ऑफिस में ऑडिट है और मेरा पहुंचना जरूरी है, थोड़ी देर में बेल बजनी शुरू हो जाएगी मेरे मोबाइल की। तो दीदी ने कहा देखो अदिति मेरी ना आज तबीयत ठीक नहीं है, आज सतगुरुवार का दिन है तो हम सतगुरुवार के दिन ना अपने जितने भी सेंटर्स हैं ना सेंटर के कनेक्शन में, मेन सेंटर के कनेक्शन में छोटे छोटे सेंटर सब सेंटर गीता पाठशाला वहां हम अलग अलग टाइम देते हैं और हम खुद जाते हैं एक दफा। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो कहते कि आज आपको छुट्टी करनी पड़ेगी। मैंने कहा दीदी ये कभी नहीं हो सकता, आज छुट्टी कैसे करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा ये नहीं पॉसिबल है, मुझे तो पहुंचना है भाई, वो फोन अभी देखवाने शुरू हो जाएंगे। तो कहती नहीं आज तो आपको छुट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि आज मैं नहीं जा सकती, आज सब जगह आपको मुरली सुनानी है। तो मैंने कहा दी फिर कभी करूंगी, मैं कल चली जाऊंगी, मैं कल छुट्टी ले लूंगी पर आज नहीं प्लीज। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की पर थोड़ी देर में दीदी की आंखों से आंसू आ गए और मुझे समझ ही नहीं आया मैं तो क्या करूं, मतलब इधर भी और उधर भी तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो क्या किया जाए। तो फिर मैंने अल्टीमेट अपनी माइंड में इमेज क्रिएट की कि अगर मैं समझो ऑफिस नहीं जाती है ना, यही सोचना पड़ता है ना, समझो मैं ऑफिस नहीं जाती तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, वो मुझे निकाल देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, निकाल देंगे तो मुझे कोई पूछने वाला तो कोई है नहीं, कोई हमारे घर में कोई बच्चे रो नहीं रहे, कोई मुझे डांटने वाला है नहीं क्योंकि वहीं रहते थे एक तरह से। तो सोचा कोई बात नहीं, प्रिपेयर कर लिया माइंड को कि मैक्सिमम यही होगा कि आज आखिरी दिन होगा, छुट्टी हो जाएगी। तो फिर मैंने सोच लिया कि ठीक है आज सेंटर क्या है काम में जाते हैं। तो कहा ओके, तो सेंटर की गाड़ी तैयार थी, हम भी तो तैयारी होकर आए थे, तो फटाफट दीदी ने कहा कर लो भोग खा लो और फिर लग जाओ सेवा में। भोग खाया और चल पड़े, और जैसे ही अभी गाड़ी सड़क क्रॉस भी नहीं की थी और ऑफिस से फटाफट घंटी बजी तो मोबाइल पे आई और फिर हमारा जो अकाउंट ऑफिसर था उसने कहा मैडम आप अभी तक आए नहीं हो। तो मैंने कहा कि उनका नाम गुप्ता जी है, मतलब अभी दूसरी जगह है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो मैंने कहा गुप्ता जी मैं जो हूं ना आज नहीं आ सकती। ओहो उसका जो रिएक्शन था बहुत ही जबरदस्त, उसने जो शुरू किया बोलना आपको बताया गया था ये था वो था ऐसे था, आपकी कंप्लेंट करेंगे आप देखना ये होगा वो होगा, बोलना जो शुरू किया नॉन स्टॉप बोलता गया। और फिर कहा कि फिर मैंने उसको फिर जब वो बहुत बोला ना फिर उसने मुझे कहा कि मैं जो हमारे बॉस हैं डॉक्टर वशिष्ठ कहते उनको कंप्लेंट करूंगा फिर देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने कहा देखो गुप्ता जी मेरे को ना लूज मोशंस हो गए हैं, तो अगर मैं ठीक हो गई आफ्टरनून तक तो मैं आ जाऊंगी ऑफिस में, पर इन केस नहीं ठीक हुई तो फिर मैं कल आऊंगी। तो उसने चार पांच बातें सुनाई और ये कहा कि आपको पहले से ही बताया था, हफ्ते दो हफ्ते पहले जब बता दिया जाता है तो फिर तो नहीं करना चाहिए आपको, अभी वो मुझे सुनाएगा। मैंने कहा देखो गुप्ता जी, मुझे नहीं पता था कि लूज मोशन मुझे आज होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपने तो मुझे बताया था, पर मुझे बीमारी ने नहीं बताया था कि मैं आज आने वाली हूँ, तो इसीलिए मेरे हाथ में नहीं है। तो उसने गुस्से में आके फोन रख दिया और मुझे पता था फोन तो आएंगे, पर जहां मैं जा रही हूँ वहां नेटवर्क नहीं लगता है। अभी तो सब जगह है खैर, लेकिन उन दिनों तो इतना नेटवर्क अच्छा नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि अभी तो फोन आने का कोई मार्जिन नहीं है, क्योंकि वहां लगना ही नहीं है फोन। तो सुबह से लेकर हमने रात को, मैं समझती हूँ 8:30-9 बजे तक नॉन स्टॉप मुरली चलती रही। वहीं माताओं को, भाइयों को, क्लासेस नॉन स्टॉप चलता ही रहा। जैसे होता है ना, काफिला ले जाते हैं एक जगह, सब जगह, उसके बाद दूसरे को टाइम दिया हुआ, फिर तीसरे को टाइम दिया, फिर चौथे को, न जाने कितनी दफा, मुझे याद भी नहीं। वो नॉन स्टॉप रात के 9 बजे तक मुरली सुनाना, क्लास कराना, यही सिलसिला चलता रहा। और रात को 10:30 के करीब हम सेंटर पे पहुंचे और रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट लिखते थे। उस दिन का चार्ट तो बहुत ही अच्छा था, तो बड़ी खुशी हुई। फिर आपको बताते हैं जो इम्पोर्टेंट थिंग अगले दिन क्या हुआ, वो है इम्पोर्टेंट। तो बाबा को पोता मेल देकर फिर रात को आराम से सो गई। सुबह जब उठी तो अमृत वेले उठते हैं ना, तो ऐसा लगा कि चेहरे के ऊपर बहुत तेज धूप पड़ रही है, बहुत ही तेज से उठते सारी धूप पड़ रही है, मतलब इतनी तेज धूप, मतलब अनबियरेबल, जैसे कि रोशनी हो गई। तो आंखें बंद करते तो अंधेरा होता है ना, ब्लैक होता है, तो पर बिल्कुल वाइट ही वाइट, जैसे बहुत ही सुनहरी रोशनी। तो जैसे कोई सो रहा होता है और रोशनी पड़े मुंह पर तो क्या करेगा, वो तो अपना चेहरा पलट लेगा ना कि चलो यहाँ रोशनी आ रही है तो इस तरफ मुंह कर लेते हैं तो रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि सो रहे हैं हम। तो जैसे ही चेहरा पलटा तो ऐसा लगा कि आज भी एहसास है कि किसी ने हाथ जो है मेरे सिर पे रख दिया हो, बहुत प्यार से ऐसे, और इतने प्यार से हाथ रखा, और जैसे ठंडे पेड़ की छांव में ठंडी हवा चलती है ना, जैसे किसी पेड़ की छांव में बैठे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और कोई सिर को ऐसे सहला रहा है, तो ऐसा एहसास हुआ, प्रैक्टिकली लगा कोई सिर को हाथ लगाता जा रहा है। मैंने आंखें खोली और सिचुएशन ऐसी थी कि आई वॉज बॉडीलेस, मतलब मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं शरीर में हूं। और जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि ये शरीर तो ऐसे लगे जैसे पूंछ है, कुछ लटका हुआ है, तो मैं बार बार टच करूं एक एक ऑर्गन को कि ये क्या है, ये मेरे साथ क्या चीज है जो लगी हुई है। जैसे हम चलते हैं ना कई दफा और पैर के ऊपर कुछ रस्सी अटक जाए या कोई कपड़ा अटक जाए तो आपको लगता है ये एक्स्ट्रा क्यों है, इसको उतारो ना, हटाओ इसको पैर से। तो सेम बिल्कुल वैसा ही एहसास लगे क्योंकि ये मेरा पार्ट नहीं है, इसको हटाओ ये तो अड़चन पैदा कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसा लगे कि कोई चीज जैसे अटकी हुई है और इसको हटाए ना, ये हट क्यों नहीं रही है। फिर बार बार ऐसा एहसास हो, फिर शीशे के अंदर तो देखा तो मैं जिस चीज को हाथ लगा रही हूं वो तो चेहरा है। तो समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो आप मानोगे कि वो जो स्थिति है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो था, मतलब बिल्कुल लगा ही नहीं कि मेरे मैं कुछ हूं, और ये कुछ और है मेरे साथ। ये बॉडी का एहसास रिंचक मात्र भी नहीं, जैसे किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए और सारी बॉडी सुन्न हो जाए और उसको टच करे तो उसको पता ना चले, उसकी सेंसेशन ही ना जाती हो ब्रेन के अंदर। सेम सिचुएशन की है चीज पर सेंसेशन ही नहीं है, तो बड़ी ही हल्की अवस्था, बहुत हल्की अवस्था। और ये मैं समझती हूँ कई सालों तक रही, कई सालों तक, और मुझे जैसे उड़ रही हूँ, जैसे हूँ ही नहीं बॉडी के अंदर। कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, तो कोई घबराहट नहीं होती थी। मुझे याद है उन दिनों मेरी दादी ने शरीर छोड़ा था और मुझे उनके शरीर छोड़ने का थोड़ा सा भी, से कहते ना रोना या गम होना, कुछ भी नहीं। जैसे कि समझ रही हूं कि वो जो सोल है ना, उसने छोड़ दिया और बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। पर ये कैसे हुआ अभी मैं बताती हूँ कि ऑफिस में क्या हुआ वो अलग बात है, पर इम्पोर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि कई दफा लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि एक तरफ है भगवान का कार्य और एक तरफ है हमारा कार्य, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी अवस्था में हम किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उस समय हमारा बहुत बड़ा टेस्ट होता है। यदि उसमें हम बाबा के कार्य को प्रेफरेंस देकर यदि हम काम करते हैं, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बाबा उसकी क्या गिफ्ट देने वाला है आपको। तो गिफ्ट कहें या लिफ्ट कहें, क्या गिफ्ट और लिफ्ट देने वाला है, मतलब वो शायद हमारे तो संकल्प माँ जैसे गीत में था ना, न ख्वाबों में था न ख्यालों में था। तो मतलब बाबा मिला वो तो है, पर बाबा मिलने के बाद वो जो बाबा जैसी अनुभूति होना, लाइटनेस की और वो जो माइट की अनुभूति होना, वो तभी हो पाती है। जैसे कई बार हम कहते हैं बाबा के शब्द हैं कि त्याग से भाग्य बनता है, जितना त्याग करोगे उतना भाग्य बनता जाएगा। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम त्याग भी नहीं करना चाहते और भाग्य भी लेना चाहते हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इस दुनिया का ही रूल नहीं है, इस दुनिया के अंदर भी यही है, जितना आप चीज के साथ डिटैच होना शुरू करोगे उतने उतनी आपके अंदर परिपक्वता आती जाएगी। बाकी ऑफिस में तो क्या होना था, कुछ भी नहीं हुआ, गई किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने देखा ऑडिटर लिख कर चला जाता है कि ये सारी है क्वेरीज आ जाती हैं, तो क्वेरीज लिख कर चला गया, ये नहीं मिला मुझे, तो अभी दोबारा ऑडिट होगा इन सब चीजों का। तो मैंने कहा ठीक है, अब जिस दिन ऑडिट होगा तो बता देना। तो फिर हमने पहले से ही सारी फाइलें उठाकर टेबल पे रख दी, तो अभी जब भी हो कोई चिंता नहीं है, तो उनको पर डिपेंडेंट, क्योंकि क्या था सारी अलमीराज की कीज भी हमारे पास थी, तो अभी क्या करेंगे वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे, तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। ऐसे होता है, रिजाइन वाली बातें तो कुछ भी नहीं है। मेरे बॉस ने भी कुछ नहीं पूछा कि क्या हुआ, मैंने उनको बोल दिया था। और आप बताओ, मैं काफी टाइम के बाद मुझे पता चला कि लूज मोशन एक ऐसी बीमारी है जिसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ही थे ना, तो डॉक्टर मुझे यही था कि अगर इसको पता चल जाए, क्योंकि ये सिम्टम्स वगैरह सब समझते हैं। लेकिन कुछ काफी सालों के बाद ये पता चला कि यही एक ऐसी बीमारी है जिसको आप नेक्स्ट डे तक भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बता सकते हो कि इस व्यक्ति को कल लूज मोशन थी, तो ये मुझे पता ही नहीं था। पर पता नहीं, जैसे बाबा ने अचानक से मुख से जो निकलवाया और जैसे हुआ वो वंडर था। तो इस तरीके से बाबा बहुत ही वंडरफुल अनुभव कराता है, और बिल्कुल जैसे फरिश्तेपन की स्टेज। और मुझे याद है कि जो हम कार्य करते हैं ना, उसका फल कब और कहां मिलने वाला है वो भी आपको नहीं पता होता। एक सूक्ष्म गति कर्मों की, उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर स्टोरी थोड़े टाइम पहले शायद मेल पर आई थी, पता नहीं शायद किसी ने पढ़ी हो या नहीं, पर मैं एक बार ये रिवाइज कराती हूँ, माताओं बहनों ने तो कम ही यूज करते हैं। तो मुझे याद है कि एक बहुत ही सुंदर स्टोरी थी कि एक बारी एक राजा था, तो उसने क्या किया कि एक बहुत सुंदर यज्ञ रचा। वो जो यज्ञ रचा तो उसके अंदर उसने 100 ब्राह्मणों को बुलाया, 100 ब्राह्मणों को का भोजन भी रखा। तो जब वो भोजन बन रहा था तो रसोईया ओपन में बना रहा था, तो बड़ा सा बर्तन था तो रसोईया बना रहा था, तो बनाते बनाते भावना तो शुद्ध थी, पर ऊपर से एक चील होकर गुजरी। उस चील के मुख में एक सांप था, तो सांप था जिंदा था, लेकिन वो सांप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। रसोईया भोजन बना रहा था, ऊपर से गुजर रही थी, तो अपने को बचाने के लिए सांप जैसे ऐसे हिल रहा था, तो पता नहीं चला वो उस खाने में गिर गया। अब रसोईये को भी पता नहीं, और सांप भी अपने को बचाने के लिए डंक निकाल रहा था, तो वो जो जहर है वो उस भोजन में मिक्स हो गया। न राजा को पता कि खाने में जहर आ गया, न रसोईये को पता कि भोजन के अंदर जहर आ गया, पर जहर तो चला गया। और जब चला गया और उसके बाद भोजन सर्व भी हुआ, सर्व होने के बाद सारे 100 के 100 ब्राह्मणों को खिलाया गया, तो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, एक भी नहीं बचा। और सब जब 100 ब्राह्मणों, ब्रह्म हत्या तो बहुत बड़ी मानी जाती है ना, तो राजा के सिर के ऊपर तो बहुत बड़ा जैसे बोझ ही आ गया, समझ नहीं आया अभी क्या करें। ऊपर जैसे स्टोरीज में होता है ना, तो यमराज के साथ उनके आसपास जो बैठे थे उन सबकी मीटिंग चल रही थी कि इस जो पाप हुआ इतना बड़ा ब्रह्म हत्या का, इसका जो बोझ है वो किसके सिर पे डाला जाए, कौन इसके लिए जिम्मेवार है। सब आपस में मीटिंग कर रहे थे, तो पहली बात आई राजा, तो कहा कि राजा को तो कुछ पता ही नहीं था, उसको क्या पता, उसने जानबूझ के तो किया ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं, उसकी तो शुभ भावना थी। तो जब राजा को पता ही नहीं कि जहर उसमें मिक्स हो गया, तो राजा के सिर पर इसका पाप नहीं डाल सकते। सेकंड आया रसोईया, अब रसोईये ने भी कोई जानबूझ के तो किया, उसे पता ही नहीं था कब चील के मुख से वो सांप नीचे गिर गया, उसने भी कोई जानकर तो नहीं किया, उसको भी नहीं पता था, तो अनजान होने के कारण उसके सिर पर भी कैसे उसकी जिम्मेवारी डाल सकते हैं। अच्छा, फिर तीसरी बात आती चील, तो चील तो अपना काम कर रही थी, चील ने थोड़ी ना डाला उसके अंदर, वो तो सांप ने हिला डुला और नीचे गिर गया, तो चील भी नहीं, सांप से फिर सांप के ऊपर बात आई, चौथा तो सीन में सांप ही था, तो सांप के बारे में सोचा गया, तो कहा कि नहीं उसका भी कसूर नहीं कर सकते, क्योंकि सांप जो है उसने तो आत्मरक्षा के लिए जहर निकाला ना, उसने कोई इस भाव से तो नहीं निकाला कि मैं ब्राह्मणों के अंदर जहर जाए और वो खाएं, तो उसका जहर निकलना तो स्वाभाविक था। अभी समझ नहीं आया कि क्या करें, तो जैसे यहां पर होता है ना पेंडिंग हो जाती है फाइल, तो यमराज के पास भी ये फाइल पेंडिंग रही, काफी टाइम तक पेंडिंग रही। तो एक दिन क्या हुआ कि उस राजा से मिलने कुछ ब्राह्मण आए, तो रास्ते में जा रहे थे, तो एक रास्ते में एक औरत जा रही थी लेडी, तो उससे पूछा कि बहन जी बताएंगे कि राजा का महल कहां पर है? तो उसने कहा हाँ हाँ ऐसे ऐसे जाना और यहां पर राजा का महल है। तो कहा ठीक है, पर एक लाइन और कह दी, कहती कि ध्यान से जाना, वो राजा जो है ना वो ब्राह्मणों को खाने में जहर मिला के खिला देता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। बस फिर यमराज को मिल गया किसके सिर पे जिम्मेवारी डालनी है, सारा पाप किसके सिर पे डालना है। उसने कहा अभी जो भी जितनी भी पाप जितना भी दिक्कत हुई ना, ये इसका सारा का सारा बोझ अब इस माता के सिर पे जाएगा। तो सारे हैरान हो गए कि यमराज जी ये क्या बोल रहे हो आप, पूरे सीन में माता का तो कोई रोल ही नहीं है भाई, माता बीच में कहां से आई है ना। तो उसके अंदर ना खाना बनाने में उसकी ड्यूटी, ना कहीं और उसकी ड्यूटी, सीन में तो उसका रोल ही नहीं, और आप उसके सिर पर ये पाप डाल रहे हो। तो उसने कहा हाँ, क्यों क्यों डाल रहा हूं? कहते जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको क्षण भंगुर उसके अंदर मजे आते हैं, उसको अच्छा लगता है। अब इस पूरे इंसिडेंट में न राजा को सुख मिला, मजे आए उसको नहीं मजे आए, उसको तो बहुत ही अफसोस हुआ, न रसोइये को मजे आए, उसका भी बहुत कुछ नुकसान हो गया और उसको भी बहुत पश्चाताप है, और ना चील को मजे आए क्योंकि उसका भी भोजन तो चला गया, और ना सांप को। इसमें जिसको मजे आए वो ये लेडी थी, ये औरत थी, इसको मजे आए तो सारा पाप जो है इसके सिर पे जाएगा। तो उसमें नीचे लिखा था कि तब से जो भी व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है, फिर उस कार्य का जब हम बखान करते हैं और एक दो को बताते हैं कि उसने ये किया, आप थोड़ा संभल के रहना, या कुछ मजे लेकर या अपने अंदर इस तरीके से इस भावना से जब हम किसी की बुराई करते हैं, तो सूक्ष्म में उसके द्वारा किए गए पाप का बोझ उस समय हमारे सिर पर भी आ जाता है। तो ये जो सूक्ष्म बातें हैं, ये जो सूक्ष्म चीजें होती हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में कई बारी इग्नोर कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा लाइफ में मैटर करती हैं। कई बारी हम सोचते हैं कि बोला ही तो है, सोचा ही तो है, थोड़ा सा ही तो किया है, उसने तो पता नहीं क्या किया है, पर हम जिस मंजिल पर जा रहे हैं ना उसमें तो एक एक स्टेप मैटर करता है। तो ये जो महीन और गुह्य चेकिंग है, बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। मुझे याद आता है हमने एक जगह बहुत सुंदर, एक दादी शायद हृदय पुष्पा दादी थी, तो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, तो बता रहे थे कि बाबा के टाइम पर, जैसे अभी थोड़े दिन पहले योग के बारे में चली थी ना मुरली, कि जो योग कराने बैठते हैं और जो किसी को निमित्त बनाते हैं योग कराने के लिए, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो बाबा के टाइम पर एक, क्योंकि शिव बाबा ऊपर से प्रोग्राम देते थे अलग अलग, तो एक बारी ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने प्रोग्राम दिया कि आपको जो है अमृत वेले 3:30 से 4:30 बजे तक 21 बहनें जो हैं वो योग कराएंगी 40 दिन तक कंटिन्यूसली। तो कहा ठीक है, पर किसी का भी जो मन है वो विचलित नहीं होना चाहिए, यानी उस एक घंटे में हमारा मन जो है वो दूसरी डायरेक्शन पे नहीं जाना चाहिए, क्यों कि बाबा को, शिव बाबा को अपने भक्तों को साक्षात्कार कराना है। अब वो एक घंटे में कोई ऐसा 5 मिनट होगा जिस समय बाबा साक्षात्कार कराएंगे, और यदि उस 5 मिनट के अंदर किसी भी एक ब्राह्मणी की बुद्धि इधर उधर भटक रही होगी तो फिर बाबा का वो साक्षात्कार रह जाएगा और उसका सारा बोझ जो है उसके ऊपर पड़ जाएगा। तो इसके लिए फिर आप देखो किनको तैयार करना है। तो ऐसे 21 बहनें तैयार की गई और फिर उन 21 बहनों को ये चेक करने के लिए कि इनकी बुद्धि इधर उधर भागती है या नहीं, सामने संदेशियां बिठा दी गई जो ये चेक करेंगी कि इनका जो मन है वो जो है भटकता है या नहीं भटकता। तो वही होता है, समझो कोई अपने को महारथी कहे और फिर वो संदेशी बता दे कि इसका मन तो उस समय भटक रहा था, तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है ना। तो 21 बहनें बैठी सामने, जो है संदेशियां बैठी चेक करने के लिए, और ये लगातार 40 दिन तक प्रोग्राम चलता रहा। तो आप सोचो बाबा ने उस समय अपने भक्तों को कितने साक्षात्कार कराए। इस तरह के सूक्ष्म चेकिंग के प्रोग्राम उस समय शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू कराते थे, उस समय स्थापना के समय। तो हमने जो स्टार्ट की थी क्लास आदि और अंत की, तो वो जो स्थापना के टाइम हमारी जो दादियों की स्थिति है, कई बारी क्योंकि बाबा तो कहते ना आदि सो अंत, तो ये अंत के टाइम पर भी उतनी ही सूक्ष्मता से हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। अभी तो कई बारी मुझे याद है, अभी थोड़े दिन पहले इसी ग्रुप के अंदर एक फॉरेनर आई हमारे पास, नाम नहीं बताते, कनाडा की है। तो वो बहन मुझे कहती है कि मुझे ज्ञान में चले हुए हो गए 6 साल, पर मेरा तो मन बहुत ही भटकता है, मेरा योगी नहीं लगता है। आप सोचो कोई कहे कि योग नहीं लगता है, अभी तो अंत का समय है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि गलत है, ये तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे उस बहन की कि उसने स्वीकार किया और उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए रेडी हो गई कि नहीं अभी मैं यहां से वो करके जाऊंगी, अपना जो लेसन वीक है उसको स्ट्रांग करके जाऊंगी। तो बहुत अच्छी थी, तो उसको कराया। पर इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो हमारी सूक्ष्म चेकिंग है कि हम जब भी 6:30 से 7:30 शाम को बैठते हैं या सुबह बैठते हैं, तो यदि हमारा मन और बुद्धि, एक बार योग कराने वालों का फिर योग करने वालों का, यदि इधर या उधर भटकता है तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। उसका करना, उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या नुकसान होगा, शायद हम इस बात से अनभिज्ञ हैं, हमें नॉलेज होते हुए भी जैसे नहीं है नॉलेज, बहुत ही सूक्ष्म है। जबकि भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कई ऐसे बड़े बड़े गुरु और महात्मा होकर गए जो प्रैक्टिकली इस सब चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, और हम तो उन भक्तों को भी साक्षात्कार कराने वाले हैं। कितनी सूक्ष्म है भक्ति मार्ग के अंदर भी, जब हम देखते हैं कि जब किसी मूर्ति की स्थापना होती है तो अनेक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो मंत्रोच्चारण होते हैं। तो उन मंत्रोच्चारण से क्या कहते हैं वो, कि हम मूर्ति के अंदर प्राण प्रत्यक्षता कर रहे हैं, तो मूर्ति के अंदर प्राण आ जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि जब जाते हैं ना भक्ति में लोग मंदिर में पूजा के लिए, तो उनको लगता है ये जो देवी है ये हमें देगी अभी, और उनको लगता है कि ये मेरी माँ है, और उसी भावना के अनुसार उनको प्राप्ति होने लगती है। तो उसी अनुसार उस मंदिर का, उस मूर्ति का, उस देवी का नामाचार होता है। तो उस मंदिर के अंदर ये मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो इस तरीके से नाम होता है। पर वो तो मूर्ति है ना, पत्थर की मूर्ति है, उसमें भी यदि उसको चैतन्य रूप भी दिया उन्होंने तो मंत्रों के उच्चारण से दिया। तो ये जो हम रोज मंत्र ले रहे हैं बाबा से, है ना, ये जो मनमना भव का मध्याजी का मंत्र ले रहे हैं, ये मंत्र जितना पक्का होता जाता है, जो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फेराओ, है ना, तो अपने आप को बार बार ये जो हम स्मृति दिलाते हैं, तो जितना जितना हम इन बाबा के द्वारा दिए गए हमारे मन के अंदर, हमारे मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए ये जो ज्ञान हमें रोज मिलता है, इसको जितना जितना हम अपने मन के अंदर उच्चारित करते जाते हैं, उतना उतना आप चैतन्य में सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले देवी बन जाते हो। वास्तविकता में यादगार तो इसी समय की है ना, इन्हीं मंत्रों को सुन सुनकर हम जो है अपनी इस अंदर की जड़ता को समाप्त करके, वो जो अंदर चैतन्यता है, आत्मा की चैतन्यता है, आत्मा के अंदर सोई हुई जो हमारी शक्तियां हैं, गुण हैं ना, उनको हम जागृत करते हैं। और एक्चुअली में तो यादगारें हमारी हैं, उस पर हम कितना चलकर अभी अपनी मनोकामनाएं और फिर दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवियां कितनी बनी है, वो हमें चेक करके चेंज करना है। मुझे याद है कई बारी एक पर एक बहुत काफी में, मुझे लगता है 2-3 साल तक बाबा ने लगातार अव्यक्त मुरलियों में बार बार कहा अपने पांचों स्वरूपों का बार बार, है ना, ड्रिल करो। तो बाबा कहीं एक मेरे ख्याल से कुछ एक दफा तो बाबा ने अव्यक्त मुरली के दौरान भी, है ना, क्लास के अंदर सबकी पांच स्वरूपों की ड्रिल भी कराई, फिर गीत भी बने अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करो, और फिर ये जो है ना बन, ये छोटी छोटी हमारे पास पेपर और पैम्फलेट जैसे भी बने पांचों स्वरूपों को बार बार, तो इतनी दफा बाबा ने किया। तो कई बार मन में चला कि ये क्या है, तो कुछ भगवान इतने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं किसी चीज को, तो यानी प्राप्ति बहुत जबरदस्त है इसमें। तो आपको बताएं, हमने प्रैक्टिकली जो बाबा ने कहा कि दिन में 8 दफा ये 5 स्वरूपों की ड्रिल करनी है, तो बाबा ने टाइम पीरियड दिया कि अभी नेक्स्ट टर्न तक देखते हैं, तो ये 5 स्वरूपों की ड्रिल का अभ्यास किया और दिन में 8 दफा भी किया, टाइम डिसाइड कर लिए, क्योंकि शेड्यूल तो बहुत ही ज्यादा बिजी होता था, पर फिर भी डिसाइड कर लिए कि करने हैं, मतलब करने ही है, कुछ भी कर लो, रिजिडनेस करो या कुछ भी करो, पर करने हैं मतलब करने हैं, बहुत दफा। और मैं समझती हूँ कि जब तक बाबा की नेक्स्ट टर्न आई हमने कंटिन्यू किया और बाबा ने मदद भी करी, दिक्कत तो बहुत आई पर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया। उसके बाद ये एक अभ्यास हो गया करने का और बहुत अच्छा लगता था। एक बारी का आपको एक बहुत सुंदर अनुभव बताते हैं। तो क्या हुआ कि ऐसे ही 5 स्वरूपों की ड्रिल का अभ्यास हम बाबा के कमरे में कर रहे थे, तो जब बाबा के कमरे में सेंटर पे कर रहे थे, तो क्योंकि इसे 8 दफा करना था ना, तो फिर ये था कि ये 5वीं दफा है, तो अभी एक बारी तो यहीं कर लेते हैं, ऐसे होता है ना मन में, एक दफा यहाँ कर लेते, एक दफा खाने से पहले कर लेंगे, सोने से पहले कर लेंगे, तो ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हैं, तो एक दफा यहीं कर लेते हैं। आप मानोगे उस समय क्या हुआ, एक एक स्वरूप की जैसे जैसे अनुभूति होने लगी, एक होता है कि अपने आप को उस चित्र में देखना कि मैं ये हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं देवता हूं, मैं अभी फरिश्ता बन गया हूं, तो ये एक तरह से विजन क्रिएट करना। और दूसरा होता है कि आत्मा के उस समय मेरे माइंड के अंदर अपने आप को जैसे उस जगह पर ही ले गए, मैं हूं ही नहीं यहां पर, तो मतलब सोल की पोजीशन ही जैसे वैसे, तो उस समय बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे मैं जो सोल हूं अभी देवता ही बन गई हूं और मैं सतयुग में ही हूं। और जब ये 5 स्वरूपों की ड्रिल जैसे अभी मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूँ, ये संगम युग है, ये ब्राह्मण स्वरूप है, अब मैं मूल वतन में जैसे पहुंच ही गई हूँ, तो जैसे ये पांच रूपों की ड्रिल एग्जैक्टली करी उसी जगह पर पहुंच के, जैसे सूक्ष्म में पहुंच ही गए, उसी समय ऐसा लगा जैसे सिर के ऊपर टोकरी होती है ना, किसी ने टोकरी उठाकर नीचे रख दी हो, और इतना लाइट, जैसे कई बार बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओगे तो आपके जो है पाप कट जाएंगे, तो वो जैसे पाप जैसे किसी चीज से कुछ काट दिया जाता है ना, पाप कट गए, तो ऐसे लगा कि सच में किसी ने कुछ उठाकर वो रख दिया और आप हल्के हो गए। पर ये बात प्रैक्टिकल है, और उस दिन के बाद हमने देखा कि कई ऐसी बातें, कई ऐसी दिक्कतें जो आप पहले ही सोचते थे कि ये दिक्कतें आ रही हैं, पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही आनी बंद हुए। जैसे उन व्यक्तियों का, उन लोगों का, जैसे पता नहीं किसी का मूड ही बदल गया हो। किसने बदला? हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ क्या किया, 500 रुपयों की ड्रिल ही तो करी थी। पर ये वंडर है कि हम ये जो बाबा कई बारी रोज ही कहते हैं ना अक्सर ही कि आप स्वदर्शन चक्र फिराओ तो आपके सबको याद हो जाता है क्या होगा तो सब बता देते कि हाँ ये पाप कट जाएंगे, है ना, तो पाप तो कट जाएंगे, असुरों के गले कट जाएंगे, पर कैसे कटेंगे उसका अनुभव एक दफा जरूर करें। कई बारी हमारे मन में आता है कि हमने पता नहीं क्या किया है जो इतने बंधन हैं, तो अगर हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं, उनके साथ बहस नहीं कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, 500 रुपए की ड्रिल तो कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। और आप मानोगे आपके साथ हो रही बातें कैसे खत्म हो जाएंगी, पर बहुत ही ज्यादा से कहते हैं ना दिल से, सच्चे दिल से कि मुझे करना है और प्राप्ति स्वरूप होकर ही करना है, और ये मुझे हो ही जाएगी, मतलब इतना दृढ़ निश्चय हो, इतना विश्वास हो बाबा के ऊपर और अपने पुरुषार्थ के ऊपर, तो ये पॉसिबल है। ये एम ऑब्जेक्ट नहीं रखें, पर दिल साफ और सच्चा रख के जब हम करते हैं तो सच में बाबा इतना जबरदस्त चेंज करवा देता है लाइफ के अंदर, वंडरफुल। कई सारे आपके बंधन जो कई बार हमें लगता भी नहीं है कि हमारे बंधन है, पता ही नहीं होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई ये हमारा तो बंधन नहीं लगता, ये तो हमारा पार्ट है, तो बंधन नहीं समझते हम, अपना पार्ट समझ लेते हैं, है ना, मेरा तो पार्ट है, मुझे तो बच्चों को भी पालना है, मुझे तो घर को भी देखना है, और हमारा तो यही पार्ट है कि हमें ये भी करना है और फिर सेंटर का भी करना है, तो ये बहनों का ये पार्ट है और हमारा तो ये पार्ट है, तो अपने पार्ट कह करना स्वीकार कर लेते हैं, अपने बंधनों को ही स्वीकार कर लेते हैं, फिर चेंज होने का कोई मार्जिन ही नहीं होता है, क्योंकि पार्ट है ना, भाई हम तो गृहस्थी हैं, तो शादी हो गई है, तो अभी तो यही पार्ट है, पर नहीं, पार्ट नहीं, ये तो परिवर्तन का युग है ना, कुछ भी बदल सकता है, सीन ही बदल सकता है। मैं आपको एक बहुत सुंदर सीन मुझे याद आता है, दिल्ली में एक सफाई करते हैं ना, ये माइयां होती है ना, तो एक सेंटर पे एक यही माई होती है ना सफाई करती थी, तो मुझे सफाई करते थे तो बहनों ने भी और कोई नहीं मिला, तो उसने कहा मैं 7 days कोर्स करना चाहती हूँ, उसने 7 दिन का कोर्स कर लिया, तो सेंटर की सफाई करती थी, बाकी घरों का भी करती, ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ स्टोरी है, और अभी भी वो बहन है माता, उसके बच्चे पति, वो वहां पर एक झुग्गी झोपड़ी की कॉलोनी थी पास में, तो वही रहती थी वो, जैसे झुग्गी वाले रहते हैं वैसे ही रहती थी, तो वैसे जैसे गृहस्थी होते हैं लिटरली वैसे ही रहना सहना बात करना सब वैसा, तो दिल्ली में वहां सेंटर पे सफाई करने आती थी, तो 7 दिन का कोर्स कर लिया, अब तो पवित्र रहना है तो पक्का हो गया। घर में बहुत शोर शराबा कलेश हुआ, बच्चों ने इतना अपोज किया, पति ने इतना अपोज किया, खूब मार खाई उसने, अच्छी तरह मार खाई, और कहे मैं तो पवित्र रहूंगी। तो एक बार सेंटर पे आ गई कि भाई मैं तो अब पवित्र रहूंगी और घर वाले मुझे तंग करते हैं, मैं तो अब सेंटर पे सफाई करूंगी, यहीं रहूंगी। रख लिया बहनों ने, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं, मतलब निल 100% जिसे कहते ना अनपढ़, बिल्कुल कुछ नहीं। तो वो माता जो है वो सेंटर पे रहने लगी। घर वाले भी आए लेने तो कहते मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, तो ज्यादा लड़ाई लड़ाई करते हैं। तो उसने वैसे ही जवाब दे दिया और उसके बाद उसके पति बच्चे नहीं आए। तो बहनों को जरूरत पड़ी, अब सेंटर खुलते हैं ना तो सेंटर खुलेंगे तो कई बारी बहने ही नहीं होती, कहां किसको भेजे। अभी वो तो मुरली भी नहीं सुना सकती, क्यों कि पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या सुनाएगी, फिर क्या करें। पर मजबूरी ऐसी हुई कि उसको ही भेजना पड़ा। तो शालीमार बाग के अंदर दिल्ली में, जिसने दिल्ली देखी हो तो, उसको बड़ा सेंटर, छोटा भी नहीं, किसी ने अपना पूरा मकान दिया बाबा का घर खोलने के लिए, बड़ा घर। वहां पर उसको सेंटर बना बनाया और एक बहन के साथ छोटी, क्योंकि वो माता थी, एज थी, तो माता को कोई थोड़ा ये होता है ना कि कोई बड़ा जाए साथ में, बच्ची बच्चियां नहीं जाए, तो एक बड़ा जाए तो सही रहता है। तो देखने में तो हेल्दी थी और माता थी, पर ऐसे पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल ही अंगूठा छाप। तो आज वो सेंटर पे रहती सेंटर संभालती है। प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, सेंटर की इंचार्ज है और डायरेक्ट वो सेंटर का कनेक्शन भी दिल्ली पांडव भवन गुलजार दादी जाते हैं ना जहाँ, उसके साथ है। अब आप सोचो, और वो अब छोटी छोटी वो मुरली भी सुना लेती है। अब सोचो कैसे, कहती है बस मैं मुरली सुना सकती हूँ और कुछ नहीं पढ़ सकती हूँ, मुरली पढ़ सकती हूँ और कुछ नहीं पढ़ सकती हूँ, तो मुरली भी पढ़ लेती है। अभी बताओ परिवर्तन हो सकता है ना। कहा तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, सफाई करने वाली, झाड़ू लगाने वाली है माता, सोच सकती है किसी सेंटर को मैं संभालूंगी, है ना। तो ये है ना वंडर, इसी दुनिया की तो वंडर है। हमारी ब्राह्मण दुनिया में भी तो देखो ना आप, अचरज नहीं है क्या, है ना। कई बार कहते कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसका पिता क्या करता था, मोदी जी का पिता, हाँ, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे ना। और आज बेटा कहाँ है, है सारी दुनिया की नजर उस पे है, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात, क्या नहीं कर सकता इंसान। हाँ, कितने सारे दुनिया के अंदर अगर आप निकाल कर देखो, है ना, लिस्ट बन जाएगी। तो हम अगर ये सोचे, अगर हम ये छोटी सी बात सोच के बैठ जाएं कि अरे ये तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि माताएं बहनें ज्यादा है ना, तो मुझे माताओं के इंस्टेंस बहुत सारे याद आते हैं। हमारे सेंटर पर एक माता आती थी, है मतलब वो प्रैक्टिकल है, नाम भी याद है मुझे उसके, युगल का नाम भी याद है। घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता था, उसके जो युगल है ना वो शराब पी के धुत होते थे, सब कुछ खाते, सब कुछ पीते, और उसको बहुत मारते। रॉयल थी, अच्छी थी, अच्छे घर की, घर अच्छा था, तो उसको जाने बिल्कुल नहीं देते थे। तो वो सेंटर पे जो है जाती थी तो बहाने से जाती थी, मार्केट जा रही हूँ, ये करने जा रही हूँ, वो करने जा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ बहाने से आती थी। और फिर बहुत रोती थी कि हस्बैंड ना पवित्रता के कारण बहुत मारता है, बहुत मारता है, बहुत ही मारता है। तो इस तरीके से काफी साल तक वो रोती रही, उसके चेहरा भी लाल हो जाता था सुनाते सुनाते, पर योग बहुत करती थी। उन्हें बताया एक बारी, उसको उसके पति ने अल्टीमेटम दे दिया कि देखो अभी मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं जो हूं दूसरी शादी कर रहा हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ठीक है, मैं जो आप दूसरी शादी कर रहे हो तो कोई नहीं, मैं उसका स्वागत करके जाऊंगी, मैं उसको यहां पर उसका स्वागत करूंगी बकायदा, मैं वो काम करके जाऊंगी, तो आप अगर मुझे चाहते हो कि मैं यहां नहीं रहूं तो मैं नहीं रहूंगी। तो वो वैसे ही उसका पति उसको उसको तंग करने के लिए उसने बहुत कुछ किया, घर से सफाई वाली निकाल दी, बाकी सारे जो काम करने वाली थी सबको छुट्टी दे दी, और सारे घर का काम करे, खाना बनाए, सब करे, और फिर पवित्रता के लिए रात को डंडे खाए तो रोज। और फिर अब उसका पति कहे कि अभी तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, इतना सब कुछ। तो जिस दिन उसके पति की दूसरी शादी होनी थी उससे एक रात पहले उसका पति उसको बताने के लिए आया कि ये आखिरी हमारा है, इसके बाद तुम कल से इस घर में नहीं दिखाई देनी चाहिए। वो शाम को योग कर रही थी तो उसका पति उसके पास आया, उसके पति को उससे वैष्णो माता का साक्षात्कार हो गया। ये प्रैक्टिकल बात है। और उसी दिन उसने उसके चरणों पर, मतलब वो तो नाक रगड़ने लगा, और शादी की तो बात छोड़ दो, वो खुद भी ज्ञान में चल पड़ा। आज आज प्रैक्टिकल पूरी फैमिली घर में चलती है, वो उसका हस्बैंड उसकी बेटी, और खूब सेवा कर रहे हैं, खूब अच्छी तरह। तो उसका पति जो है वो तो मतलब कह रहा था मैं तो अपनी लाइफ में सोच भी नहीं, क्योंकि वो सब करता था ना, खाना पीना ये वो सब, तो सब कैसे उसने धीरे धीरे सब छोड़ दिया और अपनी वाइफ के साथ रोज व्हाइट कपड़ों के अंदर सेंटर पे आने लग गया। ये वंडर, क्या क्या नहीं बदलते। मैं अपनी आंखों से कईयों को जिनको हमने देखा सेंटर के बाहर सड़क के ऊपर लेट कर शराब के नशे में धुत पड़े रहते थे, और वो जब वो सेंटर पे आने लगे तो उनकी और उनके परिवार का जीवन कैसे बदला। कहने का अर्थ है कि ये जो चीजें होती है ना, कि हम जो स्वीकार कर लेते हैं कि हम ऐसे हैं, ज्ञान में आने के बाद भी, एक तो हो गया ज्ञान में आए तो परिवर्तन हो गया, फिर जब ज्ञान में आ गए सब चीजें कर ली उसके बाद भी हम कई चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि नहीं ये तो मेरा ऐसा ही पार्ट रहेगा ना, क्योंकि हम तो आए ही ऐसे हैं ना। तो ये जो स्पेशली या कहीं पर फॉरेनर्स में मैंने देखा कि लैंग्वेज के कारण उनके मन में बहुत होता है कि अभी कि हम तो डायरेक्टली बाबा की मुरली तो नहीं सुन सकते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर वो बात तो नहीं आएगी जितना इंडियंस में आएगी। तो नहीं, प्रैक्टिकली हर चीज इस यज्ञ के अंदर जिस तरीके से बाबा बता रहे हैं और जो युक्तियां हमें बताई गई हैं वो ऐसी वंडरफुल हैं जो कुछ भी बदल सकती हैं। मतलब एनीथिंग, इम्पॉसिबल को पॉसिबल इजीली कर सकती हैं। इतने प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे फिल्म की तरह आती है ना, तो एक के बाद एक नजर आते हैं लगातार, एक ऐसी माता है, फिर ऐसा भाई, फिर ऐसा ये, फिर ऐसे बेटी बच्ची, कैसे कैसे वो क्या थे और क्या बन जाते हैं। अपनी जिंदगी को अगर हम देखें थोड़ा सा, मुझे याद है कि आज भी जब मैं शुरू में राजौरी गार्डन में जाती थी ना, तो कैसे जाते हैं, तो आजकल की लड़कियां जैसे जाती हैं वैसे ही जाते हैं ना, तो मुझे भाई साहब ड्रेस के लिए बहुत शुरू में बहुत टोकते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। वे हम स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो अभी हम कुछ भी पहन कर आए, वो तो हमारी इच्छा होती है ना, तो अभी ये क्यों टोकते हैं है ना। पर अब आप सोचो कि वो वहां पर होते हैं मेहता भाई तो बाहर बैठे होते थे तो टोकते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो बहने लेकिन मुझे पसंद करती थी लेकिन उन्हें नहीं अच्छा लगता था। तो शुरू शुरू में इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था। तो मुझे याद है कि एक बारी ऐसे ही बाबा ने मीडिया की सेवा में बहुत यूज किया, उसके अलग अनुभव बाबा ने बहुत सूक्ष्म करवाए कि कैसे बड़ों बड़ों की सेवा करनी है। तो मुझे याद है कि एक बारी किसी चैनल के लिए कोई रिकॉर्ड कर रहे थे तो मुझे कहा कि आप इसकी एंकरिंग करो, और एंकरिंग करी। तो एंकरिंग के दौरान उन्होंने जैसे ऐसा तो नहीं सूट ही पहना हुआ था, पर सूट के अंदर बाजू जो है जैसे हम तो फुल पहनते हैं ना, तो वो फुल नहीं थी, थोड़ी कम थी, ऊपर तक थी, तो बाकी हिस्सा दिखता था। तो एंकरिंग के बाद उस भाई ने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपको फुल स्लीव्स में करना चाहिए था। पर उसने वो जो ऐसे बोला ना ये वाला जो हिस्सा है, मुझे ऐसा लगा कि उसने कैसे तो वो फिल्म को देखकर ऐसे बोला कि ये वाला जो हिस्सा है, तो वो जो ऐसे बोला ना कि ये हिस्सा, तो मुझे ऐसा लगा कि इसने जैसे कि मुझे ही हाथ लगा दिया है। और वो मुझे इतना हर्ट किया उस पर्टिकुलर स्पॉट पर, आप मानोगे सेम डे मैंने सारे सूट अपनी बहन को दे दिए, सारे वन टू ऑल, जो सारे ऑफिस जाती थी मैंने अपने वन टू जितने भी थे सेम डे वो मैंने सारे अपनी छोटी बहन को दे दिए, और अपने सारे के सारे फ्रेश सूट सिलवाए, सारे हाई नेक, आज भी वही आदत है, सारे हाई नेक, सारे फुल स्लीव्स, जिसे वन डे से वन डे। इसी तरह मुझे याद है कि एक दिन एक भाई ने रोका कि कहा कि आप ऑफिस के अंदर ज्ञान सुनाते हो, तो मैंने कहा ना वहां तो सारे ही अगेंस्ट हैं। तो मैंने कहा अच्छा कैसे सुना सकते हैं, तो उसने जवाब नहीं दिया, कहा कि ऐसे तो बहुत तरीके हैं अगर वो सुनना चाहे तो, पर मुरली में जवाब आते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा जो बैज है ना ये बहुत सेवा करता है। तो आप मानोगे कि मुझे पता था कि यहाँ दिक्कत तो आएगी, पर मैंने उसी दिन से बैज लगा के ऑफिस जाना शुरू कर दिया, और उसने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा की, मतलब मैं जिन जिन से मिलती थी सबसे पहले उनकी नजर ओम शांति पे जाती थी। यहाँ यही नहीं कि जब दिल्ली में मेट्रो स्टेशन होते ना तो उस समय चेकिंग होती है, ऐसे बहने ना चेकिंग करते एक एक चीज हाथ लगा के देती, जैसे उसके हाथ यहाँ पड़ता बैज पे तो कहते आप तो ब्रह्मा कुमारी से हो। तो मैं हमेशा अपने बैग के अंदर वो सार रखते हैं ना लिटरेचर, तो उसको कहती थी अच्छा, फिर वो एड्रेस पूछती थी, एड्रेस बुक भी साथ रखती थी तो उसको एड्रेस लिख कर देती थी। इतनी सेवा होती है बाबा जैसे गाइडेंस देते हैं ना उस पर चलने से। मेट्रो में जाओ, आप किसी और थ्रू जा रहे हो, अपने ऑफिस में किसी के साथ जा रहे हो, वो हमेशा काउंसलिंग की उम्मीद रखेंगे आपसे कि एटलीस्ट ये मेरी जो मन की प्रॉब्लम है ना इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये बैज बहुत रक्षा करता है, कई दफा सुरक्षा कवच का काम करता है ये। तो अभी तो टाइम हो रहा है, हो गया इनफैक्ट, तो फिर कभी आपसे, अभी तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीजन में मुलाकात हो या कभी, तो मीडिया के आपको अनुभव सुनाएंगे कि किस तरीके से बाबा ने सारे विश्व के अंदर संदेश देने का कार्य, जैसे मीडिया और जैसे वर्ल्ड लेवल की जब चलता है ना कार्य, तो उसमें मनसा सेवा का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना उसके आप एक बहुत हाई लेवल पे सेवा नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो किस तरीके से मनसा सेवा वंडर करती है, पत्थरों को पिघलाती है ना, तो कैसे वो आपके अनुसार करने लग जाते हैं, वो भी एक वंडरफुल कहानियां होती है। अच्छा, तो हमारी यही शुभ भावना है कि बाबा जो है आप सबकी किया ही होगा बहुत सारे मैजिक, क्योंकि अभी तो हमें सुनाने का मौका है, जब आप सुनाएंगे तो आपके भी अपने अपने मैजिक्स होंगे लाइफ के, बाबा तो है ही मैजिशियंस, तो काफी चेंजेस लेकर आएगा। ओम शांति।